ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. کس کو کہا جاتا ہے؟ کافروں کو نہیں کہا جا رہا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو. آپ نے کبھی سوچا کہ ایمان والے بھی کبھی خطرے میں ہو سکتے ہیں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا، ایمان لے آئے تو بس ٹھیک ہے، اب تو کافی ہو گیا، اب تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں. یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ایمان والے تو ڈینجر میں ہیں، خطرے میں ہیں، سیف نہیں ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بچاؤ خود کو. اگر کہیں باہر اعلان ہو رہا ہو بچاؤ خود کو آگ سے، سب دوڑ پڑیں گے، اب اپنا کام کرتی نہیں رہ جائیں گی، اب سوئی نہیں رہ جائیں گی. یہ سنو کیا باہر اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں، اے ایمان والو تم خود کو بچاؤ. اس کا مطلب آپ خطرے میں ہیں تو بچنے کا کہا جا رہا ہے نا. خطرے میں نہیں ہوتے تو پھر کیا اس اعلان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. ہم سب کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. ایمان لا کے بھی خطرے میں ہو سکتے ہیں. جی ہاں، یہ آیت بتا رہی ہے ایمان لا کے بھی تم خطرے میں ہو، اور صرف تم ہی نہیں، تمہاری فیملیز بھی. وہ اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، وہ بھی ڈینجر ہیں. کس سے بچائیں؟ نارن، آگ سے. اور آگ کیسی آگ؟ کوئی عام آگ کی بات نہیں ہے. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، اس آگ سے خود کو بچا لو. ایک بہت ہی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے. دیکھیں، اخبار میں کوئی اعلان آ جائے نا تو ہم اس اعلان کو ہر جگہ پھیلاتے بھی ہیں اور ہر جگہ اس ٹاپک پہ بات بھی ہو رہتی ہے اور کتنا یقین کرتے ہیں. آج پتہ ہے نیوز میں یہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے اعلان کر رہے ہیں کہ بچا لو خود کو آگ سے، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی. سب سے پہلے کس کو بچانا ہے؟ اکثر دیکھا گیا ہم فوراً، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے کہ مائیں زیادہ تر کہتی ہیں آئے ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں، بچے اس طرح ہوں گے. قرآن کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے اپنے گھر والوں کو. خود کے بچنے کی کوئی فکر نہیں ہے اور بس سارا ڈنڈا بچوں کے اوپر ہے، یہ درست نہیں ہے. او انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. پہلا رول یہ ہے، خود اپنی انسان سب سے پہلے. دیکھیں، آپ کا اختیار کس پہ ہے، چاہے آپ کے انڈر ہیں بچے بھی آپ کے، لیکن آپ کا سب سے زیادہ کس کے اوپر زور چلتا ہے یا چل سکتا ہے؟ اپنے آپ پہ. اگر ہم اپنے آپ کو ہی ڈسپلن نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ہی اللہ کا فرما بردار نہیں بنا سکتے، اپنے آپ کو ہی غلط چیزوں سے نہیں بچا سکتے، ہم کسی کے اوپر کیا زور چلا سکتے؟ دوسروں کے اوپر تو اختیار ہی نہیں، ایون انسان کا اپنی اولاد پہ بھی نہیں اختیار ہوتا. تو اپنے آپ کو پہلے بچاؤ، کیونکہ آپ کا زور سب سے پہلے اپنے آپ پہ ہے. اور دوسرے یہ کہ آپ اپنے آپ کے سب سے زیادہ جواب دہ ہیں. بے شک آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر والوں کے کس حد تک آپ جواب دہ ہیں، لیکن اپنے آپ کے تو ٹوٹلی آپ ریسپانسیبل ہیں، اپنے آپ کی تو چھوٹ ہے ہی نہیں. ہاں، دوسروں کے کتنی حد تک ہے کہ اگر آپ نے ان کو بتا دیا ہے، کہہ دیا، اپنی سی کوشش کر لی ہے، اگر وہ نہیں بھی آتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گی کسی کی گمراہی، جبکہ تم خود صحیح راستے پہ ہو. دوسروں کی گمراہی تمہیں نہیں نقصان پہنچا سکتی کہ اس کے بچے چونکہ برے تھے اس لیے اس کو آگ میں پھینک دیا جائے. یہ نہیں، اللہ کے ہاں انصاف ہے اگر آپ نے اپنی سی کوشش کی. हाँ अगर कोशिश नहीं की तो यही है कि फिर कयामत के दिन इंसान अपना अमालनामा खोलेगा तो देखेगा कि अरे मेरी निकियां कहाँ गई, तो उसे कहा जाएगा तेरी बद औलाद जो थी उसने तेरी निकियां चाट ली हैं, पीछे जिसको छोड़ आया था। तो अगर नहीं उनको बताया होगा, नहीं उनकी तरबियत की होगी, नहीं उनको सही रास्ते पे लगाया होगा, तो वो सारी निकियां खा लेगी। लेकिन अगर उनको सब कुछ बताया हुआ है, कहा हुआ है, बार बार उनको समझाते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं, तो फिर तुम्हें नहीं कोई नुकसान देगी। मगर हाँ, तुम अपने रिस्पॉन्सिबल टोटली हो, अपने लिए नहीं। आप ये कह सकते कि नहीं मेरा तो ये उजर, ये बहाना, ये चीज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब खुतबा दिया करते थे ना, तो सबसे पहले खुद को मुखातिब किया करते, जब तकवा पे खुतबा दिया करते, तकवा की तलकीन किया करते, तो खुद को मुखातिब करते थे कि मैं अपने आप को भी और तुमको भी तकवा की तलकीन करता हूँ, ये नहीं कि बस लोगों के ऊपर ही जोर है सारा, हमारा तो सारा जोर दूसरों पे ही होता है, और मैं तो अपना हो तो हमें बिल्कुल याद ही नहीं होता। बच्चे भी ठीक हो जाएं, घर वाले भी ठीक हो जाएं, और मैं, मेरा क्या बनेगा, अपना नहीं कुछ पता। याद रखें कि अपना सवाल सबसे पहले है, उसके बाद है वह अहलीकुम, और अपने घर वालों को। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबसे पहले अपने खानदान को जमा किया था और उनको दावत दी थी दीन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया था, ऐ फातिमा बिनते मोहम्मद, बचाओ खुद को जहन्नुम से, इसलिए कि कयामत के दिन तुम्हारा बाप तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकेगा, उसका तो कोई इख्तियार नहीं होगा अल्लाह के यहाँ। ऐ मेरी फुप्पी सफिया, खुद को बचाओ आग से। ये जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ पे, ये ना हो कि तुम्हारी नेग्लिजेंस की वजह से तुम्हारी औलाद आग में चली जाए, ये तुम्हारे बच्चे लाडले चहीते, जरा तसव्वुर करो ये आग में जा रहे हैं क्योंकि तुमने तवज्जो नहीं दी। आज माओ के हाथ में क्या है, वो क्या सोचती हैं कि हमारा लाड क्या होता है बच्चों के साथ। हमारा लाड ये है कि हम उनको अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, अच्छा सैर वगैरह कराएं, बस ये चीज़ें हैं, ये हमारे लाड हैं, और ये ही हमारा, हम सोचते हैं कि हमारा बहुत, हम फर्ज पूरा कर लेते, और हम बस सारी माओ ने पकड़ लिया है तवा चिमटा चमचा देच की, बस पकड़ चटपटे पकवान बना बना के बस खिलाते रहे, ये बस हमारे, हम पूरा फर्ज अदा कर रहे हैं। बाप क्या सोचते हैं, बस कमा कमा के खिलाते जाओ, इनकी सारी ख्वाहिशात को पूरी करो, ये हमारी बच्चों के साथ बड़ी हमदर्दी है। ये नहीं हमदर्दी, ये है कि इनको आग से बचा लो, आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। वो आग जलेगी लकड़ी से नहीं, कोयले से नहीं, वो इंसानों से भड़केगी और पत्थरों से भड़केगी। वो आग किसी तांबे को, किसी लोहे को पिघलाने के लिए नहीं है, वो आग इंसानों को जलाने के लिए। तुम उस आग से बचाओ। हम ये सोचते हैं अच्छा आज सारे ही कह देते हैं, नहीं भैया हमारा पर्सनल मैटर है दीन, तो यू माइंड योर ओन बिजनेस। नहीं, कोई माइंड ओन बिजनेस नहीं कर सकता, अपने घर वालों को बचाना है, ये जिम्मेदारी है हमारी। लेकिन इस तरफ हमारी परवाह ही नहीं है। खुद सोचें कि ये कोई छोटी चीज नहीं है, वो आग वो है, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, जिसमें ना जिंदगी होगी और ना मौत होगी, ना जिएंगे ना मरेंगे। तसव्वुर करके देखिए अपने बच्चों को उस आग में, तसव्वुर भी नहीं इंसान कर सकता। फिर तुम कैसे उनको निग्लेक्ट कर सकते, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम उनको अल्लाह का फरमाबरदार बना के उठाओ। हजरत उमर फरमाते हैं या रसूलल्लाह, खुद तो जहन्नुम से बचना तो समझ आता है, मगर अपने अहलो अयाल को कैसे बचाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको भी उन चीजों से मना करो जिनसे अल्लाह ने मना किया, और उन बातों का हुक्म दो जिनको सरंजाम देने का अल्लाह ने हुक्म दिया, तो वो बच जाएंगे आग से। तो औलाद के साथ भलाई यही है कि उनको अपने लिए सदका जारिया बनाए, वरना जहन्नुम का तो एक शोला सातों जमीनों को निगल सकता है। जब जहन्नुम लाई जाएगी 70,000 फरिश्ते उसको खींच के ला रहे होंगे। और और अगर जन्नत में विद फैमिली जाना चाहते हैं ना, तो औलाद साले होगी तो विद फैमिली जाएंगे, वरना एक कहीं होगा और दूसरा कहीं और। तो अल्लाह ताला ने बता दिया, देखिए हम तो दुनिया में किसी को, किसी गैर को भी जलते हुए नहीं दे सकते। ये दुनिया में आग देखी आपने, ये दुनिया की आग तो कुछ भी नहीं उस आग के मुकाबले में, कुछ भी नहीं। ये तो 70वां हिस्सा है उस आग का। ये दुनिया की आग, इसमें कोई ऐसे नहीं कि उस वो जले थे, मगर कोई किसी को ना सिर्फ उसकी स्टीम स्टीम पहुंची थी। ये जो इसकी स्टीम कह लें, भाप कह लें, कि आग कहीं लगी थी और उनके चेहरे के ऊपर ना सिर्फ भाप आई थी। और किसी ने बताया, जिन्होंने उनको देखा था, कि उनका चेहरा इस कदर ऐसा हो गया कि देखा नहीं जाता, इतना फूल गया और इस तरह की शक्ल हो गई है। कभी किसी मरीज को अगर आपने उसकी चीखें सुनी हो जो जल गया हो, और लम्हे भर के लिए आग छुई हो, लम्हे भर के लिए, तो क्या हाल होता है। और वहां जहां पे एक हाथ नहीं जल रहा होगा, एक उंगली नहीं जल रही होगी, एक पैर नहीं जल रहा होगा, पूरा का पूरा जिस्म आग के अंदर होगा। वहां पे क्या होगा जहां पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है? यहां पे तो ट्रीटमेंट हो रहा होता है अस्पतालों में। और ऐसा अजाब है जो इंसान को चैन लेने नहीं देगा। सोचे जरा सा उबलता हुआ पानी भी ऊपर गिर जाए तो चैन नहीं आता, कपड़ा रखे ऊपर तो तब नहीं चैन, खोलें उसको तो तब नहीं चैन, कोई टच भी ना करे, सिर्फ गर्म खोलता हुआ पानी पड़ जाए तो ये हाल है। और कहां आग के अंदर रहना, लम्हे भर के लिए भी इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज हम घरों के अंदर ये फायर अलार्म और ये लगाते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो तो फौरन अलार्म बज जाए, लेकिन वहां की आग से बचाने के लिए खुद को क्या इंतजाम किया। आज अगर किसी के घर में आग लग जाए खुदा ना खास्ता, तो सबसे ज्यादा ये फिक्र होती है कि बस जाने बच जाए, माल जाए तो जाए, हर चीज जाए तो जाए, जान बच जाए। क्या उस आग से बचने के लिए खुद को फिक्र नहीं की कि वहां पे जान बच जाए? वहां जहां के खाने क्या है, कि इंसान को भूख लगेगी सख्त, मगर खाने को क्या मिलेगा? जानते हैं ना, आप पढ़ा हुआ ना, जकूम, कांटेदार घास, वो जो हलक में चुभे कांटे, ऐसी जलन करने वाला खाना होगा। ना मुंह को चैन आएगा, ना आंतों को। पीने को क्या मिलेगा? खोलता हुआ पानी, कचलहू, पीप। तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो भी कोई जिंदगी हो सकती है। ऐसा भी कोई कुछ सख्त से सख्त अपना टॉर्चर कैंप का सोचे, सख्त से सख्त, हर दुनिया के सब सारी तकलीफ और सारे टॉर्चर कैंप्स का सोच ले, वो उस अजियत से कहीं ज्यादा बड़ी अजियत है जो जहन्नुम की है। और अल्लाह जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, वो वॉर्न कर रहा है, बचा लो खुद को, ये आग है, इससे खुद को बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। और अल्लाह की बात सच्ची है, फिर इंसान को कौन सी चीज ये सब कुछ भुला देती? इंसान कहता आज नहीं, कल, कल नहीं, कल कल तैयारी करूंगी और परसों, वो कल हर कल आज बन जाता है। और इंसान कल करते 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 एक दिन वो ही आएगा कि मौत आ जाएगी, क्योंकि एक कल वो भी तो है ना जो हमारी मौत का पैगाम ला रहा है। दुनिया में इंसान इस जिस्म के लिए, इसको हिफाजत के लिए कितने इंतजाम करता है, सोचे हम कितने जर्म से बचने के लिए और सेहत बख्श खाने खाते हैं और कहीं दवाएं लेते हैं और कहीं घर बनाते हैं, को हर ठंडे गर्म से महफूज रखने की कोशिश करते हैं, सर्दी गर्मी से कितनी कमाइयां करते हैं कि ये इस जिस्म की जरूरियात पूरी हो जाए, इसका कितना ख्याल करते हैं, और वहां यही जिस्म जलेगा। तो वो रबुल इज्जत फरमा रहा है अपने आप को बचाओ, खुद को बचा लो आग से। जहां पे आग लगने का खतरा हो उस घर में इंसान आराम से सो सकता है भला? और हम सोए पड़े हैं, कोई होश ही नहीं। और अहल में कौन कौन आते हैं? इंसान के बीवी, बच्चे, माँ बाप, सब। तो अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम्हें अल्लाह के ऊपर बिलीफ है, ईमान वालों को कहा जाना ना, ईमान वाले हो तो खुद को बचाओ इस खतरे से, जिस खतरे में तुम हो, उस आग से जो इतनी शदीद है कि जिस्म को चाट जाने वाली है, आंखों की चर्बी पिघला देने वाली है, दिल को जला देती है, दिमाग को खौला देती है, आंतों को काट के पीछे के रास्ते जमीन पे गिरा देगी। इस आग से खुद को बचाओ, अपने बच्चों को बचा लो, क्योंकि इंसान को जो जिस चीज का खतरा होता है ना, सबसे पहले वो ये सोचता है बच्चों को बचा लो, बच्चे मेरे बच्चे हैं। लेकिन अगर इंसान खुद ही दुनिया में इतना गुम है कि ना उसको खुद अपनी आखिरत की फिक्र है, ना उसको खुद को बचाने की फिक्र है, ऐसा इंसान अपने बच्चों को क्या बचाएगा, जो खुद दुनिया में इतने खो गए हैं कि उनको खुद ही नहीं ये याद कि हमारी जवाबदेही है, वो क्या बचाएंगे अपने बच्चों को आग से। वालदेन और बच्चे, ये हाल है आज के, इकट्ठे बैठ के फौज फिल्में देखते हैं। और तो ऐसे मुझे बताएं, ऐसे वालदेन क्या अपने बच्चों को सबक देंगे कि बेहयाई से बचो। माएं जो है होमवर्क पे बहुत ज्यादा जोर देती हैं, मगर कुरान की तिलावत छूटने पे कोई पूछ भी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। माँ बाप खुद फजर पे नहीं उठते, बच्चों को कौन उस वक्त उठाएगा, जो खुद नमाज के पाबंद नहीं है वो बच्चों को क्या तलकीन करेंगे कि तुम नमाज पढ़ा करो। माँ खुद अगर हिजाब नहीं करती, वो बेटी को कैसे कहेगी कि तुम ये टाइट लिबास पहन के बाहर ना जाओ, खुद को ढांपो। तो पहले तो खुद को बचाना होगा ना, पहले तो खुद को पाबंद करना होगा, फिर उसके बाद अपने घर वालों को भी आग से बचा सकते। खुद भी बचो, इनको भी बचाओ, ऐसे दिन की परेशानियों से खुद को बचाएं। बाकी तो दुनिया की परेशानियां खत्म हो ही जानी, जिंदगी के साथ तो खत्म हो ही जाएंगी, कभी भी मुसीबत ऐसे नहीं है कि कभी खत्म नहीं होने वाली, हर मुसीबत का एक दिन खत्म होना है, और नहीं कुछ तो फिर मौत के साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन वो अजाब जो चिमट गया तो कभी नहीं खत्म हो सकता, उसका क्या करेंगे। हजरत सलमान फारसी ने तो जब ये आयत नाजिल हुई थी ना, ये आयत सुन के 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं था, वीरानों की तरफ निकल गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने फरमाया उसको बुला के लाओ, उनको बुला के लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वजह पूछी, क्या वजह है कि आप इस तरह निकल गए, फरमाया इस आयत की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारे लिए नहीं है, सलमान की तो चाहत जन्नत करती है, जो जिनकी चाहत जन्नत करे, जन्नत को ये चाहत है कि ये मेरे अंदर दाखिल हों, वो इतना रो रहे हैं कि रोते रोते जंगलों में निकल गए, वीरानों में निकल गए। तो वो जिनको पता ही नहीं है कि जाना किधर है और हमारी औलादों ने किधर जाना है, वो आराम से पड़े हैं, उनको फिक्र नहीं है। हम खुद को खुद चेक करें, अगर हमारे बच्चे को कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता तब ज्यादा दुख होता है, या अगर उसकी नमाज छूट जाए तब ज्यादा दुख होता है। अगर बेटी को ईद पे नए कपड़े बनाने नसीब नहीं होते तब ज्यादा दुख होता है, या वो अल्लाह की नाफरमानी का लिबास पहन के घर से बाहर जाए तो तब ज्यादा दुख होता है। अगर शौहर हराम खा रहा है उसका ज्यादा दुख होता है, या उसकी कोई जॉब चली जाए तब ज्यादा दुख होता है। वो सोचे ना, खुद ही को खुद हम चेक करें, हमें उन बातों की फिक्र है जो कि दुनिया के छोटे छोटे मसले हैं, और इन चीज फिक्र खत्म हो गई है कि ये भी आग में जा सकते हैं, हम कैसे आराम से बैठ सकते हैं। जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि हम सब विद फैमिली जन्नत में दाखिल हो गए, तब तक हम कैसे चैन और सुकून से बैठ सकते हैं, तब तक कैसे मुतमईन हो सकते हैं, तब तक खुद को खतरे से बाहर कैसे समझ सकते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे मुनाफिकों को नहीं कहा, काफरों को नहीं कहा, काफरों खुद को बचाओ आग से। हम तो यही समझते हैं काफरों ने ही आग में जाना है, ईमान वालों को कहा है, ईमान वालों खुद को बचाओ। तो फिर आप बताएं कि हम खतरे से बाहर कैसे हो सकते हैं, किस कैटेगरी में है हम, अपने आपको ईमान वाले ही कहते हैं ना। वल्लाहु आलम, हमारा ईमान क्या है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हम अपने आप को खुद को तो इसी में गर्दानते हैं ना, लेकिन देख लें कि ईमान वाले भी कितने बड़े खतरे में हैं। अगर दुनिया के सारे हमारे मसले भी हल हो जाए ना, तो ये मसला इतना बड़ा है कि इसकी फिक्र में हमें घुलते रहना चाहिए, हमें कभी नहीं चैन आना चाहिए कि हम आराम से बैठ जाएं। और इस अहल की जवाबदेही हमसे होगी, माओं से पूछा जाएगा कि बच्चों को क्या सिखाया। बाज़ माएँ तो परवाह ही नहीं करती कि बच्चों को हमने कोई नमाज सिखाई या नहीं सिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, जब 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ने को कहो, जब 10 साल का हो जाए नमाज में सुस्ती करे तो उनको मार कर धमका कर पढ़ाओ। इसी तरह रोजे की भी ताकीद के बारे में उलमा कहते हैं कि छोटी उम्र से शुरू कर देने चाहिए ताकि बच्चे को रोजे रखने की आदत पड़े, लेकिन बाज़ को परवाह ही नहीं है। सैर सपाटे से फुर्सत नहीं है, अपने फैशन से फुर्सत नहीं है, क्या फर्क फिक्र है कि बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, रोजा रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, बेटियां जो हैं वो बापर्द हैं या नहीं है, कोई फिक्र नहीं। तो पहले खुद को बचाओ, कहते रहो, उसके बाद इनके ऊपर ये, यानी आप जबरदस्ती डंडे से तो नहीं कुछ कर सकते, मगर हमारा काम है हम कहते रहें, समझाते रहें, हम दावत देते रहें, एक तरीका नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा। क्या हमें ये पता हो कि हमारा बच्चा आग में जल सकता है तो क्या क्या नहीं करेंगे हम, क्या क्या पापड़ नहीं बेलेंगे। अब इतनी बड़ी आग का अंदाजा हो अगर वालदैन को और फिर भी वो कुछ ना कहें, कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? खुद को जहन्नुम की आग का खतरा महसूस हो, खुद तो हम बहुत नेकी के काम कर रहे हैं, बच्चों की हम फिक्र ही ना करें, बच्चों के लिए ये चाहें कि वो दुनिया की दौड़ में आगे से आगे निकले, मगर उनको दीन की भी कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें परवाह ना हो, ये हो ही नहीं सकता। फिर तो इसका मतलब है हमारा अपना दीन मशकूक है, क्योंकि इंसान जो भलाई अपने लिए चाहता है ना, अपने से पहले चाहता है मेरे बच्चे को मिल जाए, जिस मुसीबत से खुद बचना चाहता है अपने से पहले चाहता है मेरा बच्चा बच जाए। तो जो नहीं परवाह करे, इसका मतलब उनको यकीन नहीं है, ना जवाबदेही का यकीन है, ना कयामत का, ना आग का, ना हो नहीं सकता इंसान अपने बच्चे के लिए वो ना चाहे जो अपने लिए चाहता है। तो वो तो ऐसी आग है जिसका ईंधन ही इंसान और पत्थर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत जब की थी तो आपकी खिदमत में बाज़ असहाब थे, जिनमें से एक शख्स ने पूछा, या रसूल्ला क्या जहन्नुम के पत्थर दुनिया के पत्थरों जैसे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि जहन्नुम का एक पत्थर सारी दुनिया के तमाम पत्थरों से बड़ा है। ये सुनकर उनको गशी तारी हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे हाथ रखा तो वो दिल धड़क रहा था। आपने फरमाया कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत की खुशखबरी दी। और इसके ऊपर अलैहा मलाइकतुन, इस पर फरिश्ते हैं। आप देखें, आग को भड़काने के लिए कोई ना कोई तो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कोई, जैसे आप देखते हैं मसलन स्टील मिल्स हैं, वहाँ पे इतनी बड़ी आग जलाते हैं, वो तो भड़काने के लिए कोई ना कोई तो होते हैं ना, जो मैनेजमेंट, जो जो उसके दारोगे या वो होते हैं। तो जहन्नुम को भी भड़काने के लिए कौन है? फरिश्ते। लेकिन वो कैसे फरिश्ते हैं? अब हमारे जहन के अंदर फरिश्ते का क्या तसव्वुर आता है? कोई नूरानी सी मखलूक होगी, कोई ऐसे होगी। ये फरिश्ते कैसे? गिलादुन, सख्त दिल, यानी ऐसे हैं कि उनको किसी के ऊपर कोई रहम नहीं आता। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। आप देख लें कि कोई सख्त से सख्त भी कहीं सिपाही, जेलर या वो टॉर्चर देने वाला हो सकता है कि कभी किसी के ऊपर उसको रहम आ जाए, हो सकता है कभी वो कहे कि हाय ये बेचारी औरत, या ये कोई मजलूम तो नहीं औरत, या ये कमज़ोर, या ये कोई बड़ी तकलीफ में है, इसके ऊपर थोड़ा सा ये कम कर दिया जाए टॉर्चर। तो दुनिया में तो ऐसे हो सकता है ना, ये इंसान का दिल पसीत जाए किसी को देख के। बड़े सख्त आदमी भी होते हैं लेकिन फिर भी कहीं कोई नरमी का जज्बा पैदा हो सकता है, लेकिन वो इतने सख्त होंगे, इतना टॉर्चर देने के बावजूद वहां पे सोचे ना किस कदर अजियत होगी, किस कदर लोगों की चीखों पुकार और फरियाद होगी, कितना शोर होगा, लेकिन वो तसे मस नहीं होंगे, उनको नहीं कोई असर होगा। जैसे कोई रोबोट होता है ना, वो रोबोट तो नहीं है लेकिन एक सिर्फ आपको एग्जांपल समझाने के लिए कि जैसे कोई रोबोट होता है उसके ऊपर कोई चीज का नहीं ना असर होता, इस तरह से होंगे। ये उनको नहीं फर्क पड़ेगा कि कौन है, कोई औरत है या कोई ऐसे है कि कोई इंसान बड़ा कमजोर सा है या कोई इंसान चीखें बहुत मार रहा है या किसी इंसान को तकलीफ बहुत हो रही है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये चीज भी इंसान के दिल को थोड़ी सी ढारक देती है ना, हो सकता है कि कौन टॉर्चर इतना कर सकता है, हो सकता है वो ही ना करें, हो सकता है उनके दिल में ही कोई ख्याल आ जाए। नहीं, वो ऐसे हैं कि जो इतने सख्त दिल हैं उनको किसी के ऊपर रहम नहीं आएगा, उनके अंदर कोई नरमी है ही नहीं। शिदाद उन बहुत मजबूत हैं, यानी अब मजबूत क्यों बताया गया कि ये भी ना समझना कि पता नहीं तुम भाग सको उनसे, तुम उनको पिछाड़ सको। वो तो इतने जोरावर हैं, इतने मजबूत हैं, इतने कवि हैं, उनसे कोई भाग भी नहीं सकता। दोनों इम्कानात ही खत्म हो गए। इंसान सोचता है शायद उनके अंदर नरमी आ जाए, नहीं, उनके अंदर तो रहम है ही नहीं। शिदादु ने आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था ना इन जहन्नुम के फरिश्तों को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि ये क्यों इतने इतने सख्त और इस तरह का इनका चेहरा क्यों है, ये कौन है? तो आपको बताया गया कि ये मालिक है, दारोगा जहन्नुम, ये जब से जहन्नुम बनी है ये उस वक्त से इसको भड़का रहा है और क्यामत तक भड़काएगा, और ये कभी नहीं हंसा, कभी नहीं हंसा। और वो एक इंतहाई कोई बदसूरत मकरू शक्ल का आदमी दिखाया गया जो मुसलसल आग जला रहा था और इसके गिर्द दौड़ दौड़ के इसको भड़का रहा था, इंतहाई खौफनाक शक्ल। यानी उनकी शक्लें भी ऐसी हैं, फिजिकली भी ऐसे हैं, दिल भी सख्त हैं, और ऐसे हैं कि जो कभी मुस्कुराते ही नहीं। स्ट्रक्चर में भी ऐसे, आदात में भी, चेहरे में भी, सख्त जान भी है, सख्त दिल भी है। इंसानों में तो वो ताकत ही नहीं है ना जो फरिश्तों में, ना रिश्वत लेंगे, ना सिफारिश सुनेंगे, ना तरस खाएंगे, ये किसी की फरियाद के ऊपर ही तरस खा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इकरमा फरमाते हैं कि जब दोजखियों का पहला जत्था जहन्नुम में चला जाएगा तो देखेगा कि पहले दरवाजे पर 4 लाख फरिश्ते अजाब करने को तैयार हैं, जिनके चेहरे बड़े हैबतनाक और नहायत स्याह हैं, कचलियां बाहर को निकली हुई हैं, सख्त बेरहम, एक जर्रे के बराबर भी अल्लाह ने इनके दिलों में रहम नहीं रखा। इस कदर ताकतवर हैं कि अगर कोई, इतने बड़े जिस्म वाले हैं कि अगर कोई परिंदा इनके एक कंधे से उड़कर दूसरे कंधे तक पहुंचना चाहे तो कई महीने गुजर जाएं। फिर दरवाजे पर 19 फरिश्ते पाएंगे जिनके सीनों की चौड़ाई 70 साल का रास्ता है। फिर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक की तरफ धकेल दिए जाएंगे, 500 साल तक गिरते रहने के बाद दूसरा दरवाजा आएगा, वहां भी इसी तरह ऐसे ही और इतने ही फरिश्तों को मौजूद पाएंगे। इसी तरह हर एक दरवाजे पर ये फरिश्ते अल्लाह के फरमान किताबें हैं। हाँ देखिए, हम तो नाफरमानी करते हैं, ये थोड़ी नाफरमानी करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ला यासून अल्लाह अमरहुम, वो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह के हुक्म की, जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया वैसे ही बजा लाते हैं, वो ही करते हैं जो अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है। तो इनसे बच के कोई कहां जा सकता है? सकर के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया ना मा अदरा का मा सकर, तुम्हें क्या पता कि वो जहन्नुम क्या है, जो ना बाकी रखे ना छोड़े, खाल झुलसा देने वाली, 19 कारकुन इस पे मुकर्रर है। तो आज फिर हम गाफिल कैसे रह सकते हैं? कैसे हो सकता है हम घर वालों को भी ना सुनाएं, उनको भी राह रास्त पे ना लाने की कोशिश करें? अल्लाह ताला ने तो जो मालूमात दी है उससे पता चलता है कि वहां पे कोई नहीं बच सकता, जो उसमें चला गया वो बचेगा नहीं। तो फिर क्या करना है? आप क्या इस आग से बचने की कोशिश करनी है जिसमें ऐसे फरिश्ते हैं और वयफालून मा युमरून, और वो वही करते हैं जो उनको हुक्म दिया जाता है, अपने तौर पे कुछ नहीं करते? यानी अगर इंसान, आम बंदा कोई कहीं चीखो पुकार सुने ना, किसी अस्पताल में भी सुने या कहीं है, तो इंसान को कितनी बेचैनी होती सिर्फ चीखे सुन के। कितना टॉर्चर है चीख सुनना भी, किसी की पेनफुल चीखें सुनाई दें अगर रात के वक्त आपको, तो आप सो नहीं सकते, इतनी अजियत होती है ना। किसी अस्पताल में किसी की कराहें सुने तो इंसान चैन नहीं पा सकता। तो इनके सामने ये इतनी आहोबुका होगी, इतनी आवाजें होंगी, इतने लोग तकलीफ के साथ शोर कर रहे होंगे, कोहराम मचा होगा, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यफालूना मा युमरून, वो वही करते रहेंगे जो उनको हुक्म दिया गया। इसलिए कोई ये एक्सपेक्ट ना करे कि वहां जाके कोई हमें कोई बचत हो जाएगी, शायद उनको तरस आ जाएगा, ये वो हमें छोड़ देंगे, या वो उनको ये हम कह के बच जाएंगे। नहीं, कुछ भी नहीं कह के बचा जा सकता, वो नाफरमानी तो करते ही नहीं है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। फिर यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें ये बता दिया कि वो जो लाड प्यार शफकतें मोहब्बतें जो इंसान को अपनी औलाद से होती हैं, उसका तकाजा ये है कि उनको सीधे रास्ते पर डाला जाए। ये उनसे लाड नहीं है कि उनको सोने दो, उनकी नींद ना खराब करो, फजर पे उठेंगे तो नींद खराब हो जाएगी, उनके ऊपर इस तरह ये सख्ती ना करो। उसके बाद ये नहीं इंसान कह सकता एक्सट्रीमिस्ट ना हो जाए कहीं। आज तो माएं इस चीज से ही डर रही हैं, अगर मस्जिद चले गए तो वहां पे कोई धमाका हो गया तो मर ही ना जाए, मस्जिद ही ना जाओ और कुरान पढ़ लिया तो एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे, इसलिए कुरान ही ना पढ़ो। माँ बाप खुद रोकने वाले बन गए। इस आग का तसव्वुर आ जाए ना, दुनिया में कोई तकलीफ तकलीफ नहीं रहेगी, लगेगी नहीं, कहेंगे चाहे बच्चा मुशक्कत करे इस आग से बचाओ इसको, खतरे में है ये मेरा बच्चा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ मैं देखता हूँ ना आखरत के बारे में, अगर तुम्हें पता चल जाए ना, तो तुम बहुत रो, बहुत ज्यादा रो, और हंसो बहुत कम, और तुम बिस्तरों पर अपनी बीवियों से लज्जत उठाना छोड़ दो। वाकई अगर इंसान इस आग का सोचे ना, तो यहाँ के मजे तो इंसान ले ही नहीं सकता कि मैं खतरे में हूँ, हर वक्त खतरे में। लेकिन ये बात क्यों भूल जाती है बार बार, क्योंकि इसके तذکرے नहीं होते ना, याद दहानी नहीं होती। इसकी याद दहानी कराना जरूरी है, और ऐसे वाकयात को बार बार पढ़ के सुन के और इन आयात को, तभी इंसान को यकीन नसीब होता है। उसके बाद ही ऐसा होता है कि इंसान जब ये कुरान बार बार पढ़ता है और इसके अंदर ये तذکرے पढ़ता है, तो उसकी उसको रात को भी फिर यही ख्यालात आते हैं, फिर उसके तसव्वुर में भी ये बातें आती हैं, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर ही इंसान अल्लाह की तरफ दौड़ने लगता है, फिर ही वो ऐसे करता है कि उसको कोई भी नेकी करना मुश्किल नहीं लगती, गुनाह छोड़ना मुश्किल नहीं लगता। जिसको ये फिक्र लग जाए ना, वो खुशकिस्मत है कि उसको ये फिक्र लग गई कि मुझे खुद को बचाना है, मुझे अपनी फैमिली को बचाना है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।